हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद द्वारा दिया गया प्रवचन, उसके ऊपर की चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। अब श्रील प्रभुपाद भगवत सेवा द्वारा कैसे मुक्ति की अवस्था प्राप्त हो सकती है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मुक्ति का एक सीधा अर्थ ऐसा है कि जिस क्लेशकारी दुखमय अवस्था से हम निकल जाते हैं बाहर, तो वो एक प्रकार की मुक्ति हो गई। कोई भी अवस्था हो सकती है, वो आपको शारीरिक क्लेश, जैसे अस्पताल है, वहां पर लोग कुछ शारीरिक व्याधि लेके आते हैं, उस व्याधि से मुक्तता हो गई तो वो एक प्रकार की मुक्ति है। मेरे मन में एक विचार सदैव इस प्रकार से आता है, कि अगर हमें कहीं हम दूर हैं बहुत, मेरे मन में विचार वो कुंभ मेला का आता है, कि कुंभ मेला में रेलवे शेड्यूल में बहुत उतार चढ़ाव होता रहता है। पिछली बार मैं आया था तभी एक ट्रेन 26 घंटे लेट थी, मतलब एक दिन और मिला कुंभ मेला में घूमने के लिए, वो बात अलग है। तो सबसे पहले कि इतने सारे लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ अभी भागना है, उधर से निकल जाना है, तो मेला क्षेत्र से ट्रेन स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते में ही आधा दम निकल जाता है, रिक्शा नहीं मिलती यार, तो चलो कैसे भी करके रिक्शा मिल गई, तो वो एक मुक्ति हो गई, कम से कम इतना सामान ढोने की आवश्यकता नहीं। फिर ट्रेन स्टेशन पहुंचे तो पता चला कि ट्रेन हमारी 26 घंटा लेट है, अर्थात हमारे कृष्णान प्रभु थे, उन्होंने सारा चैतन्य भागवत वहीं पे उसका सार सुना दिया सबको। 26 घंटे तो उनके कम पड़े उनके लिए, वो तो कहते थे कि मैं सोचता हूँ ये ट्रेन ऐसे ही लेट होती रहे ताकि हम यहाँ पर पूरी चैतन्य भागवत चैतन्य चरता मतलब सारी कथा हो जाए। फिर ऐसे ही ट्रेन में बैठे रहे, ट्रेन आ गई और उसमें सब लोग चढ़ गए तो वो शुरू होने का नाम नहीं ले रही है। और फिर 3-3.25 घंटे बाद, मतलब लेट ट्रेन आ गई उसके बाद 3 घंटे निकल गई वो, तो जैसे धक्का लगा के ट्रेन निकल गई है तो एक मुक्ति के चलो कम से कम आगे बढ़ रही है। फिर ये मन को विवंचना कि जिसको फोन किया है प्रसाद भेजो, वो प्रसाद भेजेगा कि नहीं, उसने बनाया होगा परसों के लिए, उसको आने वाले दिन भेजना पड़ेगा। चलो 3 में से कम 2 समय तक समय पर प्रसाद आ भी गया तो जो भूख थी उस अवस्था से भी मुक्ति हो गई। फिर कैसे वैसे करके आ गए बंबई सेंट्रल पे, फिर अपने मंदिर पहुंच गए, फिर अपना बाकी काम शुरू हो गया। तो एक ही छोटी सी जर्नी में, छोटी सी यात्रा में मुक्ति की कितनी अवस्थाएं हैं इसमें। और आप देखेंगे आपके दैनंदिन जीवन में अगर कुछ करना है, किसी को ये जेरोक्स करनी है, फिर उसके ऊपर इनकी सिग्नेचर लेनी है, फिर उसको आज कुरियर करना है, फिर वो वहां पहुंचना है, फिर उससे एक्नोलेजमेंट लेना है, फिर वो चेक लाना है, फिर वो एक छोटे छोटे जीवन के, बिजनेस के, एडमिनिस्ट्रेशन के, काम के, इसमें ऐसा नहीं कि एक हो गया तो काम हो गया अपना। जैसे आज भोजन मिलेगा कि नहीं, शायद मेरी ये धारणा है कि यहां पर उपस्थित जितने लोग हैं उनको शायद ये समस्या तो ना हो कि आज का भोजन मिलेगा कि नहीं। उतना तो कम से कम भगवान ने दिया है हमको। बाहर ऐसे लोग हैं, कभी कभी हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो विश्वास नहीं बैठता। अब इस विश्व में 6.5 अरब, 6.5 बिलियन के आसपास लोग हैं, और ऐसे कहते हैं कि जैसे 1 बिलियन के ऊपर 1 अरब, 100 करोड़ के ऊपर लोग डेली बिना भोजन के सोते हैं। 1/6, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं मिला पूरे दिन में, फिर दूसरे दिन शायद कुछ यहां वहां कुछ मिला। तो कई लोगों की धारणा ये है कि कितनी बड़ी समस्या है ये हंगर, भूख, कुछ करो उसके लिए। फिर नौकरी, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है यही अगर निकालना है तो इसके लिए बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है कि आप ढूंढते रहो किस किस को नौकरी नहीं है, कम से कम वो तो नौकरी मिल जाएगी आपको। बाहर के देशों में कम से कम उसका सारे फिगर्स अवेलेबल हैं। जो अभी इंटरनेट इकोनॉमी पूरी धस मस हो गई, 27 लाख के आसपास अमेरिकन युवक बेरोजगार है, 2.7 मिलियन के आसपास। तो जिसको नौकरी नहीं है उसको नौकरी मिलना एक मुक्तता है, चलो कम से कम नौकरी तो है। फिर अच्छी नौकरी नहीं है, बॉस अच्छा नहीं है, काम पे कुछ सीखने को नहीं मिलता, प्रमोशन की ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, या ऊपर का फैन काम नहीं करता, एसी काम नहीं करता। तो भूख हो, कोई व्याधि हो, जैसे कोई बीमारी है, डॉक्टर ने एक दवा दी, चलो इससे हेडेक कम हो गया, लेकिन एसिडिटी बढ़ गई तो उसके लिए और एक दवा लो, तो उसके लिए नींद नहीं आती आजकल उसकी वजह से। मतलब एक अवस्था, जैसे भौतिक जगत मानो ऐसे बनाया गया है कि किसी ने हाथ की बेड़ी निकाल दी और हमने कहा हाँ हम मुक्त हो गए, तो अचानक क्लिक करके आवाज आ गया तो पैर को लग गई कहीं, तो फिर आप कहेंगे अभी मेरे जीवन का प्रोजेक्ट है इस बेड़ी को निकालना। जैसे ही वो चाबी ढूंढो उसके लिए, चाबी बनवाओ, पैसे करो खर्च, जैसे वो निकल गई क्लिक इधर लग गई बेड़ी। तो हम देखते हैं कि किसी भी स्थिति में पूर्ण रूप से मुक्तता है ही नहीं। और श्रीमद् भागवत में जो देवतागण है वो मानो ये मुक्तता कुछ कम ही है, ये तकलीफ कुछ कम ही है, इसमें और थोड़ा सा तेल डालते हैं। उसमें कहते हैं कि आरुह्य कृष्णेन परम पदम तत। बोले ये भौतिक जगत की मुक्तता को हम मुक्तता मानते ही नहीं। जैसे अगर हम किसी देवता को जाके कहेंगे कि मैंने जीवन में क्या कमाया मालूम है, मेरा ये 2 BHK फ्लैट है, मेरी एक मोटरसाइकिल है, और मेरा इतना सेविंग्स है, मेरे इतने गहने है कि नहीं, मेरा जीवन ठीक ठाक है कि नहीं, वो वहां का वो सबसे मामूली देवता होगा, या तो उधर का कोई बेकार देवता होगा, जो भी कुछ हो सकता है, और देख के हंस पड़ेगा आप। जैसे मृगारी जो व्याध शिकारी, वो प्राणियों की शिकार करता था, आधा मारकर उनको ऐसे लपलपाते, कोई देख रहा है, कोई हिरण आखिरी सांस ले रहा है, कोई खरगोश आखिरी सांस ले रहा है। तो नारद मुनि वहां पर आ गए, तो उसने नारद मुनि को देखकर कहा कि अरे बाबा इतना आवाज क्यों कर रहे हो, ये सब भाग गए ना मेरे पशु। उसको लगा कि ये कोई मेरा कॉम्पिटिटर है, मेरा प्रतिस्पर्धी है। तो देखा कि इनका पूरा हुलिया कुछ अलग लग रहा है, ये कुछ महात्मा जैसे लग रहे हैं। उसे पता नहीं है महात्मा का मतलब क्या है, लेकिन लगा कुछ अलग व्यक्ति है ये। तो उसने फिर अपना स्टोर में से सारे जो हिरण और अलग अलग प्रकार के पशुओं की जो चमड़ी उसने निकाल के रखी थी, बोला देख कुछ चाहिए इसमें से। अब नारद मुनि क्या करेंगे उसको लेके? नारद मुनि कम से कम ऐसे कुछ कम चमड़ा वमड़ा पहनते नहीं, उनका उतना अच्छा धोती पीताम्बर पहनते हैं वो। तो मैंने कहा नहीं ना 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 ना, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो वैसे ही पृथ्वी का, और आप और हम छोड़िए, बिल गेट्स या टाटा बिरला भी अगर किसी देवता को बताएंगे कि हमारे पास इतना है, शायद देवता अपने जेब में से या जो भी झोली में से एक कोई रत्न निकालेंगे ना, बोलेंगे ये देखा, देखो इसकी वैल्यू क्या है, आपके आपके लोक में ये जो रत्न है इसकी वैल्यू निकाल के देखो। मेरे ख्याल से दुनिया के सारे ज्वेलर्स एक हो जाएंगे ना, तो बोलेंगे आज तक कभी देखा नहीं ऐसे हमने, कौन इसकी वैल्यू करेगा जब इसकी ऐसा कोई रत्न पूरी दुनिया में है ही नहीं। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं केशव तुआ जगत विचित्र, हे केशव आपके ये ब्रह्मांड ने आपने बनाया इसमें इतनी वैरायटी है। शायद आप थोड़े नाराज हो जाएंगे कि क्या आप ऐसे बोल रहे हैं, सुबह सुबह हमको बता रहे हैं हम कितने गरीब हैं। इतना कोई नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे भी ऐसे लोग हैं हमसे नीचे, हम पृथ्वी मध्य स्थित है ना, हमसे नीचे भी ऐसे लोग हैं जहां पर आप कहोगे कि मैं ऐसे खाता हूं, ऐसे पीता हूं और ऐसे घूमता हूं, बोलेंगे बाप रे ये व्यक्ति को इसका तो जीवन बन गया पूरा। तो प्रभुपाद एक ही सेंटेंस में पूरा समराइज करते हैं, इफ यू थिंक यू आर द रिचेस्ट यू विल फाइंड समबडी मोर रिचर देन यू। आप समझेंगे मैं सबसे अमीर हूं, आपसे कोई एक तो होगा कहीं पे जो आपसे अधिक संपत्ति वाला है। आप कहेंगे मैं सबसे दुखी हूं, मैं सबसे गरीब हूं, मैं ही सबसे ज्यादा दलित हूं, पद दलित हूं या दुखी हूं। एक कोई मिलेगा जिसकी अवस्था आपसे भी अधिक कष्टदायक है। ये पूरा संसार ऐसे रचा गया है, कोई नहीं कह सकता कि मैं सबसे ज्यादा सुखी हूं या मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं, सब रिलेटिव है, सापेक्ष है। तो देवतागण दसवें स्कंद में भगवान के आविर्भाव की स्तुति में जो ये श्लोक कहते हैं कि कोई व्यक्ति परम पदम, परम पद का मतलब इसमें है ब्रह्म पद, ब्रह्म सायुज्य, ब्रह्म तेज में विलीन होना। कुंभ मेला की बात याद आ गई, तो वहां पे जो अखाड़े लगते हैं वो अखाड़े मतलब एक कैंप होता है ऐसा कैंपस, और उसमें जो भी प्रवचनकार होते हैं उनके सबके गुरु ब्रह्मलीन होते हैं। कोई ऐसा गुरु नहीं है जो अभी भी इन ट्रेनिंग है या हमारे गुरु ने ट्राई किया लेकिन ब्रह्मलीन नहीं हो गए, ऐसा कोई नहीं होता। जो आज का गुरु है वो ब्रह्मलीन होना चाहता है और उसके जो पहले गुरु हैं जो गुजर चुके हैं वो सब ब्रह्मलीन है। 1008 ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर, तो लोग समझते हैं ये तो बहुत ऊंची बात हो गई, ये तो मुक्त हो गए। भागवत गीता के नहीं, ये मुक्ति भी परमानेंट नहीं हो सकती। ये मुक्ति किसमें से मुक्ति है? कोई साधारण भूख से, कोई ट्रैफिक जैम से, या कोई बॉम्ब ब्लास्ट में अटक गए, उसकी मुक्ति नहीं है। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि। वास्तविक कलयुग में हम इतने बुद्धि से कम है कि इसमें से मुक्ति पाना यह भी हम समझते नहीं कि वास्तविक जन्म मृत्यु जरा और व्याधि इससे मुक्त होना मतलब कितनी ऊंची बात है, उसके लिए कितना कष्ट करते हैं लोग। एक विचार मत आता है मन में, अब यहां पर इतने लोग थे, मेरे ख्याल से कम्युनिटी हेल्थ वाले स्कीम वाले होंगे, कुछ ना कुछ शरीर की व्याधि होगी, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, किसी को पूछेंगे आपको बुढ़ापे की व्याधि है, बुढ़ापे का कष्ट होता है? बोले हाँ होता है। किसी बीमार को पूछेंगे आपको बीमारी का कष्ट होता है? हाँ बिल्कुल होता है। बुढ़ापे का कष्ट है, बीमारी का कष्ट है और मृत्यु का तो कष्ट है ही, कई लोग कहते हैं कि मैं मानना नहीं चाहता, मैं मानना नहीं चाहता। आपके लिए मेरा प्रश्न यह है, श्रील प्रभुपाद के उपदेश के अनुसार ये तीन कष्ट अगर किसी को नहीं चाहिए, ये तीन कष्ट हैं और तीन कष्ट हमको नहीं चाहिए, इसमें कोई दुमत नहीं है, एवरीबडी एग्री, सब मानते हैं, प्रभुपाद का सॉल्यूशन क्या है इसके ऊपर? इफ यू वॉन्ट नो डेथ, नो डिजीज एंड नो ओल्ड एज, तो क्या करना चाहिए? नो बर्थ। तो लोग कहेंगे अरे ऐसे कैसे नो बर्थ, हमको तो बर्थ चाहिए पापा। मतलब आप क्या सलाह देते हैं कि हम मिट जाएं, हम है ही रहे ही नहीं? तो प्रभुपाद समझते कि ऐसी बात नहीं है, जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, अगर कोई मर गया है उसका जीवन निश्चित है, जन्म लेना ही पड़ेगा उसको, ठीक है, अगर कोई जन्मा है तो बोले हा, जब जो मर चुका है उसका अगला जन्म निश्चित है, तो जो अभी जन्म लिया है उसका मृत्यु भी निश्चित है। अगर जन्म ए है और मृत्यु जेड है तो बीच में LMNOP कुछ तो आएगा ना, QRST UV सब, वो सब क्या है? वो है थोड़ा सा डिजीज और थोड़ा सा ओल्ड एज, और अज्ञान के कारण लोग ये तीनों के ऊपर मात करने के लिए बहुत कष्ट करते हैं। झुर्रियां आ गई, बाल सफेद हो गए, तो क्रीम लगाओ, कुछ एक्सरसाइज करो, ये करो वो करो, लेकिन दिखाओ नहीं कि मैं बूढ़ा हूं। व्याधि आ गई तो इधर का ये ट्रीटमेंट लिया, वो ट्रीटमेंट लिया, इंजेक्शंस, IV थेरेपी से बीमारी को निकाल दो, एक्सरसाइज करके, क्रीम लोशन कॉम्प्लेक्शन ये करा के बुढ़ापे को निकाल दो, दवाई लेके बीमारी को निकाल दो, लेकिन मृत्यु के ऊपर क्या दवाई है? लेकिन है, पिछले महीने एक साइंटिस्ट ने कहा है 2029 में लोग मरना बंद हो जाएगा। आप कहेंगे भाई वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो क्या है आपके पास सबूत? वो बोले चिंता मत करो, साइंस टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ जाएगी और हम लोग इंजेक्शन से शरीर में कुछ ऐसे छोटे छोटे यंत्रों के पार्ट्स, नैनो बॉट्स बोलते हैं उसको, छोड़ेंगे हम, और जैसे ही आपका बॉडी फिर एक मशीन के ऊपर लिंक हो जाएगा, हमको स्क्रीन पे दिखाई देगा कि यहाँ पे कैंसर हो रहा है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, और वही नैनो बॉट्स छोटे छोटे उसको उसका उसके ऊपर मात करेंगे। तो ये मत समझना कि ये कोई अफ्रीका में कोई हड्डी वड्डी वाला आदमी बोल रहा है ऐसे, ये अच्छा खासा साइंटिस्ट है, 63-65 साल की उम्र है उसकी, और उसने विटामिन का एक धंधा शुरू कर दिया है कि जब आप अमर हो जाओगे तो क्या खाना चाहिए, और लोग आठ से वो खरीद रहे हैं, वो हजारों डॉलर खर्च करके। अब भले लोग अमर बने या ना बने, ये अमीर तो बन रहा है। तो मेरे ख्याल से उनका कहना है कि 2029 में मैं बहुत अमीर बनने वाला हूं, अमर आप बनोगे नहीं बनेगा कोई पता नहीं। ये अमरत्व के लिए बहुत प्रभुपाद का सिंपल प्रश्न था। प्रभुपाद कभी कभी ऐसे बड़े बड़े फिलोसॉफिकल प्रश्न पूछे ही नहीं, बोले आप मरना क्यों नहीं चाहते? तो लोग कहते थे मरना क्यों नहीं चाहते, बस नहीं चाहते, बोले नहीं क्यों? अरे उसे कष्ट होता है, शरीर छोड़ना पड़ता है, इतने साल रहे मीरा रोड में, इतना अच्छा लगता है, फिर अपना घर अपना परिवार। प्रभु बोले नो, ये कारण नहीं है मरना अच्छा लगता नहीं उसका, मरना इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम अमर हैं, हमारा अमरत्व हम खो दिए हैं। और कैसे खो दिए? ये नश्वर भौतिक शरीर धारण करके। एक सिंपल ट्रूथ है, सीधा साधा सत्य है जीवन का। कोई भी चीज में हम अगर खराबी देखें, जैसे मेरे साथ हमेशा होता है, अपनी गलतियां सबके सामने मान कर रहा हूं, कोई कुछ फल देते हैं तो मैं सोचता हूँ ये सेब है, अच्छा है, तो अभी तो इतनी भूख नहीं लगी है, शाम को खाता हूँ। तो शाम को फिर और कुछ काम आ गया तो कल सुबह खाता हूँ, कल सुबह फिर और कुछ हो गया, फिर कल शाम को खाता हूँ, फिर 4 दिन बाद देखता हूँ अरे ये तो खराब हो गया। तो इतना दुख होता है कि पहले अगर खाया होता तो कम से कम शरीर को कुछ तो कंट्रीब्यूट करता था, कहीं तो कुछ मतलब, वो अगर उसमें कीड़े पड़ते हैं अगर फल को ऐसे रखो तो वो उसकी मृत्यु हो गई। कोई प्लास्टिक का बॉक्स है 10 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, आज देखा तो उसमें एक छेद आ गया, अरे रे रे ये तो टूट गया, ये तो फूट गया। ये हर पल हमको जीवन में किसी ना किसी का डेथ देखना पड़ता है। आज जैसे ही मंदिर के लिए मंदिर से बाहर निकला तो किसी चूहे के ऊपर से गाड़ी गई होगी व्हीकल, तो वो चूहा मरा पड़ा था, तो मैंने कहा सुबह सुबह ही मृत्यु दिखाई दी। तो एक तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि आपका भी ऐसा ही होने वाला है हाल, शायद आप मनुष्य होंगे तो ऐसे कोई इतनी चूहा जैसा कोई होगा नहीं, इतना बुरा हाल नहीं होगा होपफुली। युधिष्ठिर महाराज भागवत में यही कहते हैं कि सब जगह पर मृत्यु है। भागवत या भागवत तो सारे शास्त्र का निचोड़ है, इस पूरे लोक को मर्त्य लोक कहते हैं। क्यों? इतने लोग जिंदा है ना, हरी भरी सब ग्रीनरी है और सब, कहीं बच्चे पैदा हो रहे हैं, कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, तो इसको जीवित लोग क्यों नहीं कहते? कि नहीं, मर्त्य लोक। हम अपने आप को बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, प्रीचर, साधु, महात्मा जो भी कहेंगे, भागवत हमको मर्त्यानाम, हमने कहा ये भी क्या इंसल्ट बात है, हम भागवत की दृष्टि में कौन है? मरने लायक लोग, जो मरने वाले हैं वो। ये कहां रहते हैं हम? मीरा रोड में, मुंबई में, इंडिया में, एशिया में नहीं, मर्त्य लोक में रहते हैं, जहां पे लोग मरते रहते हैं। इसीलिए छोटी छोटी विक्ट्रीज, छोटा छोटा विजय, इसको साधु विजय नहीं समझता। जैसे मामूली खांसी चली गई, हाँ बच गए, नहीं कल और कुछ हो जाएगा, थोड़े से पैसे आ गए, चलो टेम्पररी मनी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आत्यंतिक दुख निवृत्ति, थोड़ा संस्कृत समझने में पेचीदा है लेकिन मामला वही है जो हम चाहते हैं वो। आत्यंतिक दुख निवृत्ति का मतलब है ऐसी कोई अवस्था कोई दे सकता है जहां पर कोई किसी प्रकार का दुख ना हो। शायद आपको ये बात मालूम होगी, हमारे ये अभी हम बैक टू वारंट मैगजीन में कवर करने वाले हैं इसलिए फ्रेश है मेरे मन में। हमारे एक अच्छे भक्त हैं उपेंद्र प्रभु, और उनकी परमिशन है उनकी ये कहानी बताने के लिए। वो एक बार घोर निराश अवस्था में पड़े थे, कुछ कंपनी बंद पड़ने वाली थी या कुछ ऐसे कुछ हो रहा था, और उन्होंने कहा कि अभी तभी लगता है उनका विवाह अभी नहीं हुआ था, जो ठीक से इतना याद नहीं है, बहुत हो गया अभी। जब आदमी कहता है कि बहुत हो गया, उसका मतलब क्या है? अब मैं, वो कहता है संसार गुड बाय, आप रहो चैन से, मैं यहां से निकला, अभी जो भी है आप ही खा लो पी लो, जो भी कुछ है वो, मैं आपके सुख में कुछ हिस्सा अपना मांगना नहीं चाहता, आपने मुझे केवल दुख ही दिया है। और गए वो रेलवे लाइन की तरफ, और अभी मतलब चॉइस खाली था कि ये ट्रेन की, इसके आने वाली ट्रेन की क्या। तो फिर एक मन में विचार आ गया कि नहीं, एक और चांस देते हैं दुनिया को सुधारने के लिए। कई भी लोग समझते हैं कि मैं दुनिया को और एक चांस देने वाला हूं, अगर वो सुधर जाए ठीक से, मेरे साथ ठीक से बर्ताव करे तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर वही मार्ग में अपनाऊंगा। तो उनको अभी आपको बहुत आश्चर्य होगा ये कि मैं यहां पर यहां बैठकर इस माइक्रोफोन में ये क्यों बोलने वाला हूं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है केवल उनके इस हिस्से के लिए। उनको रेडियो पर एक गाना सुनाई दिया, उस समय का हिट गाना था वो, मैं गाना तो नहीं चाहता, लेकिन आपको समझाना चाहता हूं कि क्या था वो, कि गायक बता रहा था कि मैं तुझे एक ऐसी जगह ले जाता हूं जहां पर गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। शायद आप में से जो उस समय कॉलेज या स्कूल में होंगे आपको यह गाना याद होगा। नहीं नहीं, गाना बताने की जरूरत नहीं है। तो ये पार्ट मैं बहुत फटाफट खत्म करना चाहता हूं ये गाने वाले का। उनके मन में इच्छा हो गई कि अरे ऐसी कोई जगह है जहां पर केवल प्यार ही प्यार मिलता है और गम नहीं, आंसू नहीं, दुख नहीं, कष्ट नहीं। तो बोले चलो इस अवस्था के लिए कुछ ट्राई करते। और उन्होंने भगवान के प्रति श्रद्धा थी। देखो कैसे होता है, भगवान के प्रति श्रद्धा जो बिना गुरु के होती है ना, वो ऐसे आधी कच्ची बिना शेप फॉर्म की ऐसी होती है वो। तो उन्होंने भगवान से कहा कि बताओ कहाँ है वो ऐसी कोई जगह, मुझे चाहिए वो, देखना है मुझे। और भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति ऐसी एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस है, एक निरागस बालक की भावना जैसे होती है ना, वो जैसे छोटे बालकों को कहो कि ये सोने की है, वो कहेगा हाँ ये सोने की है। क्यों? क्योंकि मेरे पापा कहते हैं ये सोने की। उसको ये सोना है कि नहीं उससे मतलब नहीं है, मेरे पापा कभी झूठ नहीं बोल सकते, ये धारणा ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वैसे ही उस अवस्था में बिना किसी ट्रेनिंग के भी अगर एक भगवान को पुकार कर दी जाए कि बताइए ऐसी जगह कहां पे है और कौन मुझे बता सकता है, अर्थात फिर वो प्रार्थना भी भूल गए, वो जिंदगी को बाय बाय बोलने का वो भी भूल गए, वापस बैक टू नॉर्मल काम चालू है उनका। और एक मित्र से उन्होंने ये बात कह दी कि ये गाना उस दिन सुना ना, उससे मुझे बहुत मेरा मन प्रभावित हो गया। तो उसने कहा मालूम है आपको, ये गाने का जो लिरिक्स लिखने वाला व्यक्ति है उसका जानी दोस्त मेरे पहचान का है, तो हम चलते हैं उनको मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा सच, जिसने ये गाना लिखा है उसको तो मालूम होना चाहिए ना कि ये जगह कहां पे करके। तो कहेंगे जल्दी जरा मिला दो, कुछ करते हैं हम। तो अभी देखिए क्या प्लॉट कैसा है। ये भी एक गाने का लिखने वाला गायक, क्या कहते हैं उसको, गीतकार, फिल्मी गीतकार, एक फेमस आदमी, उसका एक दोस्त, ये दोस्त इनके दोस्त का दोस्त। तो वो इनको लेकर उसके बंगले पर गए। वो कई फिल्मों में था लेकिन इतना कोई ऐसे बहुत ज्यादा अमीर नहीं था। तो उन्होंने पूछा कौन है क्या है, तो उन्होंने बताया सब कि आपका गाना वो मेरे जीवन के लिए ऐसा महत्वपूर्ण ठहरा कि मैं तो लगभग मैंने सारा विश्वास ही छोड़ दिया था दुनिया के ऊपर। तो उसने कहा कौन सा गाना, तो उन्होंने बताया गाने के बोल। वो बोला अरे ये तो आप क्या समझे, मैं जानता हूं ऐसी कोई जगह है करके। बोला होना चाहिए ना, नहीं तो आपने कैसे गाना लिखा वो। अरे बोला पेट भरने के लिए क्या क्या नहीं लिखना पड़ता हमको, आपको पता नहीं है। बोले नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, आपने ये कैसे कह दिया कि मुझे ऐसी जगह ले चलो जहां पर कोई कष्ट नहीं है, दुख नहीं है। और बोल देखो कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, ये जीरो पॉइंट हो गया, नो निगेटिव, जीरो। लेकिन प्यार ही प्यार मिलता है तो कहीं तो होनी चाहिए ना ऐसी जगह। तो वो व्यक्ति गीतकार इनके इनोसेंस के ऊपर ऐसे हंस रहा है, बोला अरे आप सही में, मतलब उसको सब पहली बार पता चला होगा कि मैं जो लिखता हूं वो दुनिया के लोग सुनते हैं, क्या क्या उनके मन पर प्रभाव होता है। उन्होंने कहा देखो महाशय सच कहता हूं, बिल्कुल सच कहता हूं, मैं ऐसी कोई जगह नहीं जानता। जितना मेरा जीवन देखोगे आपके जीवन में जितने कष्ट है ना उससे शायद अधिक ही होंगे मेरे पास कष्ट। तो ऐसे कुछ जानता नहीं मैंने, केवल ये अच्छा गीत लगा, मुझे भी वो कल्पना अच्छी लगी और मैं तो ऐसे ही कुछ गीतकार हूं, पेशा है मेरा, पेट पालने के लिए करना पड़ता है। तो वो थोड़े से निराश ही हो गए कि ये क्या है, ये लोग अच्छी अच्छी कविता में अच्छी अच्छी भावना लिखते हैं और बाद में बोलते हैं कि ये केवल एक एम्प्टी कविता थी, केवल छोड़ दो उसे। बाद में उनका मन ठीक हो गया। कई वर्षों बाद जब प्रभुपाद का पहला ग्रंथ हाथ में लिया और जब एक एक करके प्रभुपाद के कंसेप्ट समझने लगे, बोले यही तो है, वो इसी की तो खोज में था मैं। तो ये कोई मामूली कवि होगा, जड़ कवि बोलते हैं उसको संस्कृत में, जड़ वस्तु के ऊपर कविता करने वाले। लेकिन कवि भले जड़ हो, उसका मन भी जड़ मन ही होगा, इंद्रिय भी जड़ है उसकी, उसकी जो क्रेविंग है, उसके अंदर की जो लालसा है, वो दिव्य आध्यात्मिकी। चलो और एक दृष्टिकोण लेते हैं हम। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये दुनिया पूरी भिखारियों से भरी हुई है। तो लोग कहते हैं कि भाई वाह, आप एक भिखारी हो तो हमको भी भिखारी बोल दिए। प्रभुपाद कहते क्यों नहीं, डिग्री लेके घूमते रहते हो दर दर ऑफिस पर कि मुझे नौकरी दो, मुझे नौकरी दो, ये भिखारी तो क्या है। आज की दृष्टि से ये देखा जाए, पूरे देश भिखारी है, जानते हैं आप, पूरे देश जाकर वर्ल्ड बैंक के सामने बोलते हैं ये 500 करोड़ दे दो, प्लीज दे दो। अर्थात भीख मांगने वाला कोई आईएएस ऑफिसर होता है, बड़े शान से भीख मांगता है। और जैसे पहली बार जब मिडिल ईस्ट, दुबई, अबू धाबी, इसके बारे में हम सुन रहे थे, तब एक जोक आया था कि वहां के लोग सारे अमीर है। नहीं, किसी ने कहा हाँ वहां के भिखारी भी अमीर है। तो हमने कहा ऐसे कैसे, बोला हाँ अपनी अपनी गाड़ी में भीख मांगते हैं, है तो भिखारी ना, लेकिन वो अरब देश का भिखारी है तो वो गाड़ी से भीख मांगता है। तो है ही सब भिखारी। और प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी कहा आप तो है कि नहीं, बोले हम तो है ही, हम ऑथोराइज भिक्षुक हैं, हम कृष्ण के लिए भीख मांगते हैं। अर्थात एक दृष्टि से वही केवल एक कृष्ण भक्त है, वही केवल एक दृष्टि से भिखारी नहीं है। सनाथ जीवितम उसका एक वास्तविक नाथ है। और प्रभुपाद जी ये जो मुक्ति की आकांक्षा करने वाले, हम मुक्त होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, मुक्त, मुक्ति 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 मुक्ति, सायुज्य, ब्रह्म सायुज्य में विलीन भी होते हैं। प्रभुपाद एक इतना एसिडिक सेंटेंस बोलते हैं उसमें, दिस बेगिंग बिजनेस कंटिन्यूज अप टू द पॉइंट ऑफ लिबरेशन। और क्योंकि वो सही व्यक्ति के पास जाकर भीख नहीं मांगते, पतंती अध वहां से भी गिर जाते। खैर मुक्ति की बात बाद में फिर आएगी, कुंती देवी दो तीन अच्छे पॉइंट्स बताती है मुक्ति के बारे में। श्री प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, तो हम वैष्णव हैं, बनना चाहते हैं वैष्णव इच्छुक, हमारी मुक्ति की धारणा क्या है, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, बाकी सारे रूपों को छोड़कर स्वरूप में स्थित हो जाओ, ये आपकी मुक्ति है। सिंपल। एक बैटरी वॉलेट में आर्टिकल आया था, ये एक छोटे से गांव में अचानक एक व्यक्ति आ गया, और वो कभी कभी ऐसे किधर ही देखता रहता था। फिर उसने उस पोस्ट ऑफिस में एक नौकरी शुरू कर दी क्लर्क के रूप में, और उसको पूछते थे कि आप कहां से हैं, तो वो बताता नहीं था कभी। ऐसे 13 साल गए उधर, और छोटा सा गांव था तो लोग आपस में कानापूसी कर रहे थे कि ये कौन होगा। एक ने कहा शायद जेल से छूटकर भागा है, एक्स कन्विक्ट प्रिजनर है कोई तो, लेकिन अभी अपना जीवन नए दौर से शुरू करना चाहता है इसलिए बताना नहीं चाहता। दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं मैं सोचता हूं कोई प्रीस्ट होगा, कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट है, उनको विवाह करने की फैमिली रखने की कोई अनुमति नहीं होती, तो अपना कोई दूर का गांव छोड़कर यहीं पे आया होगा और एक नए सिरे से जीवन शुरू किया होगा उसने। तो गांव के लोगों में ये था कि कितना ईमानदार है, शांत स्वभाव का है, बहुत प्रेमी है। लेकिन 7-8 साल पहले की बात उसे पूछो तो वो कुछ बताना नहीं चाहता। और एक दिन अपने घर में वो एक बाथरूम डोरमैट जो होती है, बाथरूम में मैट, उसके ऊपर पैर फिसल कर गिर गया, टोंग करके उसको सर को एक सदमा पहुंचा। अचानक बोलने लगा कि अरे मैं तो इस गांव का नहीं हूं, मैं तो उस गांव का हूं, मैं वहां मेरी पत्नी है, वहां मेरे बच्चे हैं, वहां मेरा ये है, वहां मेरा वो है। फिर कुछ उसके जो मित्र थे नए अभी इस गांव के, उन्होंने फिर पूछताछ की, फोन किया, तब पता चला कि एक गांव में रहने वाला व्यक्ति एक दिन रास्ते में चलते हुए गिरकर चोट पहुंची उसको सर में, और सारी मेमोरी उसकी जीरो हो गई, उसको पता ही नहीं मैं कौन हूं। कोई भी ट्रेन लिया, कोई भी फ्लाइट लिया, कोई भी बस में पहुंचकर इस गांव में पहुंच गया, कैसे पहुंचा पता नहीं, और उसको याद ही नहीं हो रहा है कि मैं कौन हूं। और इसलिए लोग पूछते थे कि आप कहां से हो, बोले वो मत पूछो, बाकी उसका नेचर वैसे रहा, खाली मेमोरी जीरो। कभी कभी होता ना कंप्यूटर में मेमोरी प्रॉब्लम, तो ऐसा मेमोरी प्रॉब्लम हो गया उसका। वो पिछली मेमोरी आने के लिए एक धक्का लगना पड़ा उसको, नए घर में बाथरूम में गिरा तो अचानक उसको याद आ गया, अरे मैं तो ये हूं। तो मुक्ति का मतलब है कोई एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें सडनली हम जान जाते हैं कि अरे मैं तो यहां का नहीं हूं, मैं तो वहां का हूं। ये जो हरे कृष्ण जाप है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महाप्रभु इसे कहते हैं कि जैसे आप एक आईने में देख रहे हो और आप कहते हैं कि ये आईना कितना खराब है, कुछ दिखाई नहीं देता इसमें, क्योंकि आईने के ऊपर धूल जमी हुई है। आईने में देखते समय हम केवल धूल देखते हैं, क्यों? क्योंकि आईने के ऊपर धूल जमी हुई है। मन रूपी दर्पण के ऊपर काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये धूल जमी हुई है, और जब हम उसमें अपने चेहरे को देखते हैं तब हम केवल काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर देखते हैं। महामंत्र के जाप से उसको हम धीरे 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 साफ कर रहे हैं। एक दिन जब ये पूरा साफ हो जाएगा तब हम उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं कि हम कहेंगे अरे मैं तो ऐसे हूं। यही है महामंत्र के जाप का सार। तो मुक्ति का मतलब केवल प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसा नहीं कि चार हाथ आएंगे या पंख आ जाएंगे या मुक्ति का मतलब है चेहरे के पीछे कोई ऐसे लाइट आ जाएगा, नो। जो व्यक्ति नाम जब शुरू कर रहा है, जिसको इच्छा है कि मंदिर में जाकर कुछ किचन में सेवा करें, प्रभुपाद का ये मुक्ति है, दिस इज लिबरेशन। मे बी एक स्टेज हो सकती है, जैसे हम कुंभ मेला क्षेत्र से स्टेशन पहुंच गए, चलो स्टेशन पर पहुंच गए कम से कम, वहां से गाड़ी है अभी तक तो शुरू नहीं हुई, चलो गाड़ी चालू हो गई, अंत में जब हम अपने घर आ जाएंगे तो वो मुक्ति कंप्लीट हो जाती है। अब समझो हमारी ट्रेन इलाहाबाद से लेकर नागपुर आ गई और लगाया आगे नहीं जाएगी, कभी आपने अनुभव किया ऐसे? बंगाल में बहुत बार होता है ऐसे, ये ट्रेन आगे नहीं जाएगी तो फिर दूसरी कोई ट्रेन है पता नहीं, तो हम यहां क्या करें, हम क्या बताएं आपको, ये इसके आगे नहीं जाएगी। तो ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, हठ योग, इसकी जो मुक्तावस्था है ये ऐसी है कि अपना पैसा देके, एजेंट को पैसा देके, अच्छा 3 टियर AC का टिकट निकालकर बैठो और एक जगह पर अपनी गाड़ी बंद। बोले आगे क्यों नहीं जाएगी, बोले बस नहीं जाएगी, तो पीछे भी जाएगी कि नहीं वो भी पता नहीं। तो ज्ञान कर्म हठ योग में बहुत ऊंची अवस्था प्राप्त करने वाले लोग हैं, उनको कहेंगे ये माला जपो। बोले क्या है कि ये अभी ये कैसे कर सकते हैं, हम इतना हम एक्सपर्ट हो गए हैं इस मार्ग में, अभी हम नहीं कर सकते, मतलब अभी उनकी गाड़ी पीछे भी नहीं आ सकती, ना आगे जाएगी ना पीछे आ सकती है, बेचारे वहीं के वहीं बैठे रहे। अच्छा है कि भक्ति योग की जो गाड़ी है भले स्टॉपिंग एट ऑल स्टेशन है, बोले स्टॉपिंग बिटवीन ऑल स्टेशन है ना, एक तो ट्रेन जानता हूं मैं, वो फिरोजपुर जनता करके है, वो यहां से मथुरा जाने के लिए हर एक स्टेशन और हर एक दो स्टेशन के बीच में दो बार ऐसे रुक के जाती है वो। तो कई लोगों की भक्ति नहीं, भक्ति मार्ग ही स्लो मार्ग है। प्रभुपाद लिखते हैं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, गीता में लिखते हैं द स्लो प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, ये स्लो मार्ग है लेकिन श्योर है।
आगे श्री प्रभुपाद एक लास्ट पॉइंट में कवर ये करने वाला हूं,
मन्ये त्वाम कालम, भगवान को काल बताया गया है, भगवान काल है लेकिन भगवान के ऊपर काल का प्रभाव नहीं है। शायद आप लोगों ने किसी ने अनुभव लिया होगा कि किसी ने कहा कि मैं ठीक 11 बजे आ रहा हूं, आप मेरा आउट सेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़े रहना। आप 11 बजे खड़े हैं उधर, 11 के पहले 10 मिनट ही आ गए और ये महाशय आते हैं 12:15 बजे। आप देखोगे वो जो 45 मिनट्स प्लस 10 55 मिनट्स का जो समय था ना, आप लगेंगे कि घंटे से खड़ा हूं मैं इधर, कितने कितना टाइम कितना समय हो गया। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं समय को कि अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आया। और वही अगर जैसे मेरा पहले अनुभव होता था ये कि अगर फैमिली के साथ कोई सिनेमा जाना है तो मैं पहले सोचता था कि 6 बजे का सिनेमा है और 9 बजे खत्म हो जाएगा, 3 घंटे। स्कूल में था तब से मेरे मन में तो यही धारणा थी कि 3 घंटे कैसे कटेंगे, और ऐसा होता था कि अभी गए और अभी वापस आ गए, अरे खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उस मूवी में उसमें हम इतने समर्थ हो जाते हैं, कभी कभी लोग देखते ना वो उसको मार रहे थे और मार, ये यहां बैठकर कह रहा है, उसे क्या पता कि कोई संबंध नहीं दोनों का, लेकिन इन्वॉल्वमेंट एब्सॉर्प्शन। अब हम जानते हैं कि भागवत पढ़कर उसमें उतना एब्सॉर्प्शन होना चाहिए, लेकिन ये जो काल्पनिक कथानक काल्पनिक कथा है उसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर देखते हैं कि अरे इतना समय गया। अभी कभी कोई यात्रा के बीच में ऐसे होते हैं कि 10 दिन की यात्रा है मायापुर, और अचानक देखते हैं कि अरे आज तो वापस जाने का समय हो गया, कल तो आए थे ना, कल परसों तो आए थे ऐसा लगता है। तो टाइम रिलेटिव है, समय सापेक्ष है, मतलब समय एब्सोल्यूट नहीं है हर एक के लिए। हम चाहते हैं कि 100 वर्ष जीऊं तो अच्छा है। आप में से कोई जानता है कौवा कितने साल जीता है? क्या सुना है आपने? किसी ने सुना नहीं है उनके बारे में? मुझे सुनाई दिया कि वो 400 वर्ष जीता है। सच है? हो सकता है। और जो व्यक्ति बताने वाले थे वो ऐसे ऑथोरिटी बता रहे थे कि देखो आपने कभी मरा हुआ कौवा देखा है किधर? हाँ, अभी इतने कौवे हैं, मतलब बंबई तो कौवे से ही भरा हुआ है, लेकिन कोई तो आज मरता होगा कल मरता होगा या कोई बीमार होगा, ऐसे नहीं। तो उनका भी जीवन 100 वर्ष का ही है उनके अनुसार। और कुछ कीट पतंग ऐसे हैं जो केवल एक रात जीते हैं केवल। एक बार हम दौन गए थे, वो जो सह्याद्री नहीं सह्याद्री एक्सप्रेस नहीं कुर्डुवाड़ी एक्सप्रेस कोई चीज़, एक सह्याद्री जाती है ना उधर से, नहीं और एक ट्रेन है कुछ नहीं महालक्ष्मी नहीं सिद्धेश्वरी सिद्धेश्वरी जाती है। तो 4:15 के आसपास उतरे और वहां से तुरंत 2-व्हीलर से आ गए, और मैं सोचा था आज मैं जाकर नदी पर स्नान करूं। तो उसके पहले बोले थोड़ा जप कर लें क्योंकि अंधेरा था, मतलब सूरज आया नहीं था। काय का जब वहां बैठा तो ऐसे सारे अलग अलग प्रकार के कीटक आने लगे सर पर, तो हमने कहा अरे ये तो जब भी नहीं हो रहा है स्नान भी नहीं हो रहा है। अचानक सूरज आ गया ऊपर, 5:55-6 की बात है, 6:15 बजे क्या देख रहा हूं मैं, ये सारे जो कीट पतंग है ना वो ऐसे हजारों की संख्या में मर रहे हैं, जितने भी 15 मिनट पहले किसी को काट रहे हैं भाग रहे हैं चिल्ला रहे हैं दौड़ रहे हैं ये कर रहे हैं। तो उधर का एक व्यक्ति कह रहा है कि इनका जीवन एक रात का होता है केवल, एक ही रात में सब कुछ, फैमिली लाइफ करियर कंपटीशन झगड़ा प्रेम सारा मामला एक रात में फिनिश्ड। केशवत्वा जगत विचित्र, कैसा है ये फिर ये? और हम सोचते हैं कि नहीं वो मेरा दुश्मन है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा ऐसा है मेरा वैसा है। एक राजा थे, उनकी इच्छा हुई कि अपनी पुत्री के लिए, जैसे शास्त्र में शब्द है विधिवत या विधि लिखित, लोग कहते हैं ना कि तुमको ये क्यों नहीं मिला, मतलब यहां पे लिखा नहीं था, यहां पे कौन लिखता है? बोले ब्रह्मा जी। ब्रह्मदेव हरेक के कपार के ऊपर, फोरहेड के ऊपर लिखता है कि इसका, इसको ये नौकरी मिलेगी, इसको ये वाइफ मिलेगी, ये हस्बैंड मिलेगा, ऐसे होगा वैसे होगा। अफसोस है कि हम उसको पढ़ नहीं सकते बस। तो ये राजा इतने महान थे ककुद्मी, उन्होंने सोचा कि मैं क्यों केवल पंचांग देखकर या किसी अस्त्र देखकर पूछ के करूंगा, मैं ब्रह्मा जी से जाके पूछता हूं कि मेरी पुत्री के लिए कौन सा उपवर अच्छा है, कौन सा वर अच्छा है। तो वो पावरफुल थे, पुण्यवान थे, अपनी पुत्री को लेकर सीधे गए ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक में क्या होता रहता है? सदैव कथा, कथा कीर्तन, कथा कीर्तन, कथा कीर्तन। ब्रह्मा जी मतलब है एडमिनिस्ट्रेटर, हमेशा उनको, उनका मोबाइल हमेशा चालू रहता है कि यहां पर एक असुर बढ़ गया है, यहां पर ये प्रॉब्लम हो गया, यहां पर ये हो गया है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका मन उसमें नहीं लगता। वो अच्छे अच्छे परम संत, परम साधु, ऐसे लोगों को बैठकर कथा करते रहते हैं। बीच बीच में केवल जाना पड़ता है किसी असुर को वरदान देने के लिए, फिर प्रॉब्लम होता है, फिर भगवान से माफी मांगते हैं, वो सब चलता रहता है। वो उस समय वहां पर कीर्तन चल रहा था, तो ब्रह्मा जी को मैसेज मिला कि कोई महाराज है, अच्छे पुण्यवान है, आपसे मिलने आए। बोले कम से कम ये जो भजन है उसको तो खत्म होने दो। तो कुछ समय निकला, 15-20 मिनट 25 मिनट गए होंगे, तो महाराज आ गए। बोले क्या है? बोले महाराज आपसे एक विनंती है कि मेरी बेटी है, ये रेवती नाम है इसका, आप देखेंगे कि सर्वगुण संपन्न है, मैं चाहता हूं कि आप डायरेक्टली प्रत्यक्ष आप बताएं कि इसके लिए अच्छा वर कौन होगा। तो ब्रह्मा जी ने अपने चार मस्तक हैं उनके, तो उन्होंने देखा आपके मन में कौन है। तो उन्होंने कहा कि इधर का नॉर्थ साइड का एक राजा है, उसका लड़का है, एक साउथ में कोई है, इधर ईस्ट में है। उन्होंने कहा आप जानते हैं यहां पर आप कितने समय थे? तो बोले हाँ 15-20 मिनट हुए होंगे। उन्होंने अलग बताया होगा कि आधा प्रहर हुआ होगा। बोले जो राजा के पुत्रों के बारे में आप सोच रहे हैं ना, उनकी 40 पीढ़ियां गई निकलकर। बोले क्या बात कर रहे हैं? बोला वही तो बात कर रहा हूं, पर्वत यहां के वहां हिल गए, जहां समुद्र था वो सूख गया, जहां पर सूखा रेगिस्तान था वहां पे समुद्र आ गया, क्या क्या नहीं हो गया ये 40 पीढ़ियों के जाने में। तो उन्होंने कहा अब क्या करें हम, मेरी बेटी तो ऐसी है। लेकिन बोले कोई बात नहीं, मैं ये जानता हूं कि ये आपकी बेटी जो है पुत्री वो दिव्य है, गुणों से संपन्न है, दिव्य गुणों से संपन्न है। अब द्वापर युग आ गया है और साक्षात भगवान परब्रह्म स्वरूप कृष्ण और उनके बड़े भ्राता बलराम जी हैं, तो बलराम जी को आपकी पुत्री सौंप देना। तो वो तो पूरे चक्कर में आ गए कि ये क्या ऐसे होता है। तो ऐसा है समय रिलेटिव। जिस किसी का 2009 किसी का बहुत अच्छा गया, कोई कहता है कि सबसे घटिया गया ये, तो रिलेटिव। अर्जुन एक प्रश्न पूछकर भगवान को थोड़े से प्रॉब्लम में डालना चाहते हैं कि गीता, भगवान गीता आपकी ऑथराइज्ड नॉलेज, बुक ऑफ नॉलेज है, और आपने करोड़ों साल पहले इसको सूर्य भगवान को बताई, सूर्य नारायण देव को, तो ऐसे कैसे? आपका जन्म तो मेरे लगभग साथ ही हो गया है, हम दोनों एक ही उम्र के हैं। तो भगवान अर्जुन को यही बताते हैं कि अर्जुन यही बात ठीक से समझो। अर्जुन का प्रश्न है अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथम एतद् विजानीया त्वाम आदव प्रोक्तवान इति, कि कृष्ण आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपको एकदम झूठा साबित नहीं करना चाहता, लेकिन एक प्रश्न है कि आप कैसे वो उपदेश इतने करोड़ों साल पहले बताए। भगवान कहते हैं मैं ये सब जानता हूं, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुन। अर्जुन मेरा ये पहला जन्म नहीं है, आपका भी नहीं है। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुन, मैं सब जानता हूं, वेदा हम समतीतानी, आप नहीं जानते। यही एक अंतर है। प्रभुपाद जी इसी एक छोटे से मुद्दे को लेकर इतना बड़ा उसका एक्सपांड करते हैं। कृष्ण क्यों जानते हैं? क्योंकि कृष्ण की बुद्धि, कृष्ण की मेमोरी कृष्ण का इंटेलिजेंस वो इटर्नल है, नित्य है। जिसकी मेमोरी इटर्नल है, जिसकी याददाश्त स्मृति नित्य है, क्यों उनकी मेमोरी नित्य है? क्योंकि शरीर नित्य है। इसका मतलब उन्होंने शरीर बदला नहीं है। और हमारी स्मृति नित्य क्यों नहीं है? क्योंकि हमने शरीर बदला है। तो ये तो डिफरेंस हो गया ना। इसी का मतलब हो गया कि ये व्यक्ति कोई स्पेशल व्यक्ति है। तो जो लोग कृष्ण के ऊपर आक्षेप करते हैं कि ये कृष्ण ऐसे क्यों करते हैं, कृष्ण वैसे क्यों करते हैं, भगवान झूठ क्यों बोलते हैं, भगवान ने ये क्यों किया, भगवान ने वो क्यों किया, अरे पहली बात समझो, उनका शरीर और उनकी आत्मा दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम में नित्य है केवल यह आत्मा अंदर की, बाकी सारा अनित्य। तो जो व्यक्ति प्रश्न पूछते हैं कि ये संसार इतना दुखी क्यों है, बोले संसार दुखी नहीं है, संसार वाले से अच्छा है। नित्य आत्मा अनित्य शरीर और अनित्य मन से अगर कुछ आनंद लेने की कोशिश करेगा तो वो सुखी कैसे होगा? एक नीति शास्त्र में कथा आती है कि एक फॉक्स लोमड़ी और एक उसको क्या बोलते हैं जो जिसकी चोंच बहुत एकदम नोकिली होती है, नहीं डक नहीं, हिंदी में क्या कहते हैं उसे, सारस, सारस। अनेक पक्षी हैं ऐसे, लेकिन एक है जिसकी चोंच एकदम लंबी होती है। तो ये लोमड़ी जो है फॉक्स, उसको अपने घर दावत के लिए बुलाता है और इतने बड़े बड़े ब्रॉड प्लेट्स में कुछ सूप देता है पहले, और लोमड़ी चप 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 करके खाना शुरू करता है। अब ये इतनी लंबी चोंच में वो कितना सा आएगा, वो आएगा तो इतना ऊपर जाने के लिए भी तो टाइम लगता है बहुत। तो आधे घंटे से वो प्रयत्न कर रहा है, कुछ खा ही नहीं पा रहा है वो, तो भूखा रहता है वो। तो फिर कहता है कि अच्छा बहुत अच्छा था, अगले संडे आप मेरे घर आना। तो लोमड़ी भी आके देखता है कि इतने लंबे घड़े हैं ऐसे लंबे लंबे, और वो सारस कहता है कि खाओ खाओ। तो वो तो देखता है कि तो मेरा तो मुंह नहीं जा रहा है अंदर, और इतना लंबा है, मेरी जीवा भी नहीं जा सकती, और इसकी चोंच इतनी लंबी है, वो तो बड़ी अंदर गई फिट होके, और वो सब 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 करके खा रहा है। तो एक दृष्टि से हम या तो लोमड़ी है जिसको जीवन रूपी इतना लंबा घड़ा मिला है खाने के लिए, या तो हम सारस है जिसको इतना बड़ा प्लेट मिला है खाने के लिए। तो प्रॉब्लम वो जो खाना है वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वो वैसे अच्छा है। वो आत्मा नित्य है, आत्मा का सुख अलग प्रकार से नित्य है, लेकिन अनित्य संसार में आकर वो नित्य सुख की अभिलाषा करना, इसमें बहुत तकलीफ होती है। ये संसार में सुख है, पहली बार सुन रहा हूं हरे कृष्ण वाले बोल रहे हैं कि संसार में सुख है, नहीं तो हमेशा बोलते हैं कोई सुख नहीं है, कोई सुख नहीं है, सुख है कैसा है, लेकिन तातल सैकते वारी बिंदु सम सुख सुतमित रमणी समाजे। विद्यापति कहते हैं कि रेगिस्तान में आदमी पानी 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 कर रहा है, और कोई कहता है कि हाँ मुझे मालूम था आपको यहां पे पानी की आवश्यकता होगी, कितने समय से पानी नहीं मिला, अरे बहुत दिन हो गए, पूरा घसाल गला गला पूरा सूख गया है, कुछ पानी लाओ। तो अपने से ड्रॉपर निकालता है, जैसे वो इंक का ड्रॉपर होता है, और ले लो पानी। आप कहेंगे ये पानी है ये, लेकिन इससे मेरा क्या होगा, मेरी तो इच्छा है इसे समुद्र पी जाऊं मैं। बोले इतना ही है हमारे पास, इससे आगे नहीं मिलेगा। तो संसार में जो सुख है, जो पानी चाहिए हमको, वो है यहां पर, लेकिन वो मिलता है एक समय एक ड्रॉप, उसको हम चाटते हैं, सोचते हैं कि अच्छा है तो और चाहिए, फिर और एक ड्रॉप के लिए और रुकना पड़ता है। और हरि कथा हरी लीला हरी धाम हरी प्रसाद हरी भक्तों की सेवा, इसको बड़े बड़े आचार्य कहते हैं अरे ये तो जैसे मीठे पानी की नदियां बह रही है। इति दृक् स्व लीला भीर आनंद कुंडे मज्जंतम। सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि भगवान दामोदर ऐसे प्रेम भरी लीला करके अपने एक एक भक्तों को पकड़कर इस आनंद के कुंड में फेंक रहे। सोचो कैसी अवस्था होगी कि स्विमिंग नहीं आ रहा और किसी ने आपको पानी में फेंक दिया, पूरे नाक कान सब में पानी जाएगा ना। वैसे ये आनंद का पानी सब जगह से जा सकता है, उसके लिए एक ही काम करना पड़ता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। धन्यवाद। इसके आगे हम कथा आगे बढ़ाएंगे। श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा गोपीनाथ की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की, हिताई गौर प्रेमानंदी।